अभिमन्यु ने इशिका की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ ठीक कर दिया था। उसने प्रशांत, उर्वशी और नकुल को राजवंश विला से बाहर कर दिया था। नक्श तो पहले ही घर छोड़कर जा चुका था। आज का दिन अभिमन्यु और इशिका की जिंदगी में काफी सुकून भरा था। अभिमन्यु काम के चलते रात को देर से आने वाला था। इशिका ने उसका काफी देर तक इंतजार किया था। देर रात के करीब जब इशिका की आंख खुली और अभिमन्यु उस समय तक वापस नहीं लौटा था, तो इशिका को उसकी चिंता सताने लगी। इशिका ने अभिमन्यु को कॉल किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। पृथ्वी के जरिए इशिका को पता चला कि उसकी लोकेशन ऑफिस में ही बता रही थी। इशिका तुरंत पृथ्वी के साथ ऑफिस पहुंची। जैसे ही उन दोनों ने अभिमन्यु के केबिन का दरवाजा खोला, इशिका जोर से चिल्लाई। वहां फर्श पर खून दिख रहा था। अभिमन्यु का मोबाइल उसकी डेस्क पर बज रहा था। वो सब देखकर इशिका लगभग गिरने ही वाली थी कि पृथ्वी ने आकर उसे पकड़ लिया। अभिमन्यु को वहां ना देखकर उन दोनों के ही चेहरे पर घबराहट के भाव थे। पृथ्वी कुछ पल के लिए अलग ही जोन में चला गया, लेकिन जब उसने इशिका के सिसकने की आवाज़ सुनी तो उसे होश आया। अभिमन्यु के वहां ना होने पर पृथ्वी को ही इशिका को संभालना था। पृथ्वी उसे समझाते हुए धीमी गंभीर आवाज में कहा, हम फुटेज में देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। प्लीज थोड़ी हिम्मत रखिए, हमें अभी सर को भी ढूंढना है। आई विश सब ठीक हो। इस वक्त वो यही दुआ कर रहा था कि जमीन पर बिखरा खून अभिमन्यु का ना हो। वो सब देखकर पृथ्वी का दिल भी टूट रहा था, लेकिन उसे हिम्मत बनाकर रखनी थी। उसने बिना देर किए तुरंत अभिमन्यु के कमरे की सीसीटीवी फुटेज निकाली। हालांकि कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन जब फुटेज में देखा तो कुछ देर पहले उसके केबिन में मालविका आई थी। कैमरे के अंदर देखते हुए उसने मिडिल फिंगर दिखाते हुए बहुत शान से उसे तोड़ दिया था। मालविका को ये सब करते देखकर इशिका गुस्से में जोर से चिल्लाई। वो बोली, ये औरत आखिर मर क्यों नहीं जाती? इसने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया और अब अभिमन्यु के पीछे आ गई। कुछ भी करो पृथ्वी, मुझे मेरा अभिमन्यु वापस चाहिए। तुम पुलिस को कॉल करो। अभिमन्यु, वो उसे लेकर आओ पृथ्वी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पृथ्वी ने उसकी बात मानी और तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में राजवंश एम्पायर में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जहां पुलिस से लेकर राजवंश एम्पायर के कुछ लोग इकट्ठा थे। पृथ्वी की कॉल करने पर दिशांक वहां पर पहुंच गया। मालविका की इस हरकत की वजह से हर कोई गुस्से में था। पुलिस हर एक छोटी चीज की जांच कर रही थी ताकि मालविका को पकड़ सके। उन्होंने आखिरी बार फुटेज में मालविका को अभिमन्यु के केबिन में जाते हुए देखा था। हालांकि उसके केबिन में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, एक स्पेशल की कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मालविका उसके केबिन में तब घुसी थी जब आखिरी बार अभिमन्यु भी अपने केबिन में आया था। उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो पाता, उससे पहले मालविका ने अपना पैर लगा दिया था। वही बिजी होने की वजह से वो केबिन के अंदर आने के तुरंत बाद फाइलों के ढेर की तरफ चला गया था और मौके का फायदा उठाकर मालविका अंदर आ गई थी। अभिमन्यु के गायब होने की वजह से इशिका की रो रोकर हालत खराब हो रही थी। दिशांक ने उसे समझाते हुए कहा, काम डाउन, तुम्हें ऐसी हालत में खुद को शांत रखने की जरूरत है। हम मिस्टर राजवंश को अच्छे से जानते हैं, वो उस औरत से निपट लेंगे। नहीं दिशांक, कमरे में खून बिखरा हुआ था, अगर उसने अभिमन्यु को कुछ कर दिया होगा तो। वैसे भी वो सब लोग मेरे और अभिमन्यु के पीछे पड़े हुए थे, इशिका ने सुबकते हुए कहा। उन सब की सबसे बड़ी चिंता का कारण ये था कि थेबिन के अंदर खून बिखरा हुआ था। ब्लड सैंपल ले लिया गया था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होने की वजह से क्रिस्टल भी वहां आई हुई थी। सैंपल देने के बाद वो इशिका के पास जाकर बोली, हो सकता है कि ये खून मालविका का हो। दुआ करो ना कि सब कुछ ठीक ठाक हो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। अगर ये खून मालविका का होता तो इस वक्त अभिमन्यु यहीं पर मौजूद होता और मालविका जख्मी होती। अभिमन्यु गायब है, वो उसे अपने साथ लेकर गई है, इशिका ने जवाब में कहा। अब कोई भी बात उसके दिल बहलाने को काफी नहीं थी। उसका दिल बस कुछ भी करके अभिमन्यु के पास जाना चाहता था, उसे सही सलामत अपनी आंखों से देखना चाहता था। शुरुआती जांच करने के बाद पुलिस ने इशिका से कहा, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। क्या आपको किसी जगह का पता है जहां पर मालविका दास उन्हें लेकर जा सकती है? अगर मुझे पता होता तो अब तक मैं खुद वहां पहुंच चुकी होती। मालविका का एक ही सहारा था, उसका भाई, जिसे उसके बेटे ने मार डाला था। आदर सिंघानिया भी मर चुका है, तो मालविका के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इशिका ने मायूसी से कहा। ठीक है, फिर हम आसपास के इलाकों की फुटेज चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि केबिन का कैमरा मालविका ने खुद तोड़ा था, पर अचानक से पूरे राजवंश एम्पायर के सभी कैमरे डिसेबल कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि राजवंश एरिया के बाहर साइड लगे कैमराज भी बंद पड़े हैं। ये किसी तरह का इत्तफाक नहीं हो सकता है। या तो कोई मालविका दास के साथ मिला हुआ है, या फिर उसे पता होगा कि किस तरह उन सारे कैमराज को एक साथ बंद करना है, इंस्पेक्टर ने हैरानी के साथ कहा। जरूर उसने किसी की मदद ली होगी, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि ये सब खुद से कर सके, लेकिन हाँ, कोई उसका साथ जरूर दे सकता है। किसी को भी मैनिपुलेट करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, इशिका ने सिर पकड़कर जवाब दिया। पुलिस वहां से जरूरी जानकारी और सबूत के साथ वहां से जा चुकी थी। दिशांक इशिका को संभाल रहा था, तो वहीं पृथ्वी अपने आदमियों के साथ मिलकर अभिमन्यु को ढूंढ रहा था। उन सब के जाते ही इशिका ने दिशांक से परेशान स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दादी और बाकी लोगों को क्या कहूंगी। अगर अभिमन्यु नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? दिशांक, मैं उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाऊंगी। शांत हो जाओ इशिका,
दिशांक ने उसे हक करते हुए कहा। इस वक्त तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही आ रही हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ देर सो जाओ, उठने के बाद गुड न्यूज ही मिलेगी। नहीं दिशांक, अभिमन्यु के साथ न जाने क्या कुछ हो रहा होगा, और ऐसे में मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। चलो हम दोनों चलते हैं और अपने सोर्सेस से ढूंढने की कोशिश करते हैं, इशिता ने दिशांक से अलग होकर कहा। वो उठकर जाने लगी। दिशांक उसे रोकना चाहता था, पर इशिका के आगे उसकी एक नहीं चली। कुछ ही देर में दिशांक और इशिका साथ में गाड़ी में थे, और इशिका दिशांत को हर जगह लेकर जा रही थी जहाँ मालविका को थोड़ी भी मदद मिल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ इस वक्त सुनैना के साथ था। भले ही वो राजवंश एम्पायर ना गया हो, लेकिन अभिमन्यु के गायब होने के बारे में उसे पता चल चुका था। अभिमन्यु के गायब होने की वजह से पार्थ गुस्से में था। वो तुम्हारा दुश्मन है, और तुम उसे बर्बाद करने के मकसद से ही यहीं पर आए थे। हमारा काम किसी और ने कर दिया है। अच्छी बात है ना, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुनैना ने उसे गुस्से में देखकर हैरानी जताते हुए पूछा। क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में टांग अड़ाए। जो काम मेरा है वो मैं खुद करना पसंद करता हूँ। पहले उस मालविका दास की बेटी ने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की, और अब उस मालविका ने। आई स्वेयर, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा मॉम, पार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। तुम भले ही गुस्सा करो, लेकिन मुझे इन सब में सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। देखना, एक दिन राजवंश एम्पायर के सीईओ की पोजीशन पर तुम ही बैठोगे, सुनैना ने मुस्कुराकर उसका कंधा सहलाकर कहा।
लेकिन मुझे वो पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे तो राजवंश एम्पायर को ही बर्बाद करना है, उनका नाम इस दुनिया से मिटाना है। अगर अभिमन्यु ही नहीं रहा तो इशिका की बर्बादी पर दुख कौन मनाएगा। मुझे इशिका सिंघानिया से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये सब इतना बड़ा प्लान किया तो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु को अपने घुटनों पर लाने के लिए, पार्थ ने सिर हिलाकर कहा। उसे कोई कितना भी क्यों ना समझाए, लेकिन इस तरह अपना प्लान चौपट होने की वजह से पार्थ काफी गुस्से में था। सुनैना ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि पार्थ को समझाना बेकार है, वो जिद्दी था, उसे अपना काम अपने तरीके से ही करना पसंद था। उसने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, ठीक है फिर, दुआ करते हैं कि अभिमन्यु राजवंश सही सलामत मिल जाए। अपने भाई और डैड के बारे में क्या सोचा है? प्रशांत राजवंश जेल में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नकुल को बाहर निकालने के लिए कुछ करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी भी असली जगह वहीं पर है। आपने उन्हें वहां जिस मकसद से भेजा था, वो उस मकसद को भूलकर खुद का पर्सनल फायदा निकालने में लग गए। सॉरी टू से मॉम, मैं इस मामले में कुछ नहीं करने वाला, पार्थ ने अपने हाथ हवा में उठाकर जवाब दिया। सुनैना ने भी आगे कुछ नहीं कहा। पार्थ को लगा कि सुनैना इस बारे में उसे फिर से फोर्स ना कर दे, ये सोचकर वो बोला, मैं राजवंश विला जा रहा हूँ, इस वक्त वहां मेरी जरूरत होगी। उम्मीद है कि अभिमन्यु सही सलामत मिल जाए। सुनैना ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और फिर उसे जाने का इशारा किया। पार्थ के जाने के बाद सुनैना के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने अपना मोबाइल निकाला, वो अंजलि का नंबर ढूंढ रही थी। अंजलि का नंबर मिलने पर सुनैना ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, न जाने कब से तुम्हें कॉल करने की ख्वाहिश थी। सोचा था कि जिस दिन तुम्हारा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, उस दिन कॉल करके बताऊंगी कि तुमने मेरी जगह लेकर कितनी बड़ी गलती की थी। अंजलि, तुम चली गई थी, अच्छी बात है, लेकिन अपने बेटे को भी लेकर जाना चाहिए था। अब तुम्हारी गलतियों की सजा वो भुगत रहा है। अंजलि ने तुरंत सुनैना को कॉल किया। अंजलि के लिए नंबर अननोन था। उसके कॉल रिसीव करते ही सुनैना ने तुरंत कहा, क्या हाल है मिसेस प्रशांत राजवंश? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू, और मुझे मिसेस राजवंश क्यों बुला रही हो? मेरी पहचान अंजलि चौहान के तौर पर है, और बोल कौन रही हो तुम? अंजलि ने गुस्से में चिढ़कर जवाब दिया। सुनैना की मिसेस राजवंश बुलाने पर ही उसका पारा चढ़ गया था। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? आज तुम भले ही मिसेस राजवंश ना हो, लेकिन एक वक्त में तुमने मेरी जगह ली थी, सुनैना ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी आवाज में तलखी थी। सुनैना की इंट्रोडक्शन देने पर अंजलि समझ गई थी कि ये कॉल किसका है। उसने गुस्से में कहा, फर्स्ट एट ऑल मैंने किसी की जगह नहीं ली थी, तुम खुद उसे छोड़कर गई थी। आई विश कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाती तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। खैर छोड़ो, मुझे क्यों कॉल किया है? अब तो वो सिंगल है, जाकर खेलो उसके साथ घर घर। अब मेरे घर घर खेलने की नहीं, घर बिगाड़ने की उम्र है। सुना है अभिमन्यु गायब है, मिल नहीं रहा, कैबिन में खून मिला है उसके, लाश तक गायब है, सुनैना ने बात को तोड़ मरोड़ कर बताया। हालांकि अंजलि को अभिमन्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही उसने बताया उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। बकवास मत करो और कॉल रखो, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, अंजलि ने जल्दी से जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। सुनैना की बातों ने अंजलि को बुरी तरह परेशान कर दिया था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। अभिमन्यु राजवंश कोई आम इंसान नहीं था जो इस तरह गायब हो जाए,
और किसी को पता न चले। पहले अंजलि को लगा सुनैना उसे परेशान करने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन जैसे ही उसने न्यूज़ देखी उसका दिल थक से रह गया। जिस अंजलि ने कभी गोवा में कदम न रखने की कसम खाई थी, अभिमन्यु की फिक्र ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। रात के लगभग 12 बजे के करीब गोवा से दूर जंगलों के अंदर एक आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो कोई और नहीं, अभिमन्यु था, जिसका सफेद शर्ट इस वक्त खून से लथपथ था।